शांति तेईस जून 2025 आज का ज्ञान मंथन। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ए पर्सनल रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल टीचिंग, नो मुरली टेक्स्ट और ऑडियो इज यूज। ज्ञान मंथन प्रतिदिन हम सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है। आप दोनों जगह जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं और लाइव ज्ञान मंथन कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो है 84 जन्मों का राज। आत्मा का पहला पाठ 84 जन्मों का राज, आत्मा का पहला पाठ। क्योंकि ये जो जन्म है किसके होते हैं, आत्मा के या शरीर के? 84 जो जन्म है ये किसके होते हैं? चौरासी जन्मों का राज कौन बताएगा? ये हमारे 84 जन्म शरीर के होते हैं या आत्मा के होते हैं? आत्मा के 84 जन्म होते, ठीक बात है या किसी का पक्ष अलग है? 84 जन्म आत्मा के होते हैं या शरीर के होते हैं? हाँ जी, आत्मा के नहीं होते। आत्मा जन्म लेती है या शरीर जन्म लेता है?
शरीर होता है तो आत्मा के साथ शरीर में तो आत्मा
भाई। शरीर होता है
शरीर के आत्मा आ नहीं सकती,
बिना शरीर के आत्मा नहीं आ सकती। क्या समझते हैं आप? इसको कौन समझा सकता है इस समस्या का, इस मुसीबत का? ये अजीब सी बातें करता है 84 जन्म और आत्मा का पहला पाठ। 84 जन्म कौन लेता है? किसका पहला जन्म होता है, आत्मा का या शरीर का?
आत्मा का जन्म।
और फिर मरता कौन है?
मरता है।
फिर कौन जन्म लेता है दूसरा?
आत्मा का जन्म।
फिर किसका जन्म हुआ?
शरीर का जन्म।
शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। और अब हमने चर्चा की थी जीवन काल की बात। किसको याद है जीवन काल? आत्मा का जीवन काल और शरीर का जीवन काल। हाँ, जब आत्मा परम धाम से इस संसार में आई उसका जीवन काल शुरू, और जब आत्मा यहाँ से वापिस गई तो उसका जीवन काल खत्म। वो 4999 साल से कम एक साल हो सकता है। हर आत्मा को इस संसार में पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है। सबके 84 जन्म नहीं होते। बात में बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में बिठा देनी है कि सबके 84 जन्म नहीं होते। होते हैं सबके 84 जन्म। यहाँ पर विषय दिया गया है 84 जन्मों का राज, और 84 जन्म सबके नहीं होते। 84 ड्रेस, 84 जन्मों का मतलब है 84 ड्रेस, 84 कपड़े या 84 सूट, 84 मतलब शरीर। शरीर कौन धारण करता है? आत्मा शरीर को धारण करती है या शरीर आत्मा को धारण करता है? आत्मा शरीर को धारण करती है। तो आत्मा इस संसार में आकर ज्यादा से ज्यादा 84 शरीर ले सकती है, और कम से कम एक शरीर तो उसे लेना ही पड़ेगा। ये जन्म की बात है, शरीर को धारण करना। बाकी जन्म और मृत्यु जो है वो शरीर की होती है, ड्रेस की होती है। अब एक ड्रेस खत्म हो गई तो दूसरी ड्रेस लेनी पड़ेगी। तो दुनिया में ये सबसे बड़ी भ्रांति हो गई, सबसे बड़ी भ्रांति ये हो गई कि उन्होंने ये समझ लिया कि शरीर हूं मैं, और शरीर समझ लेने के कारण, शरीर समझ लेने के कारण कौन सी समस्या खड़ी हो गई? उन्होंने मरना और जन्मना समझ लिया कि मैं मरूंगा, मैं पैदा होऊंगा। जबकि सच्चाई हम अब समझ चुके हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा जीवन काल अलग है, शरीर का जीवन काल अलग है। शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 ड्रेस धारण करेगी। वो आत्मा के जन्म नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ड्रेस धारण करने को जन्म समझ लिया, जबकि शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती रहती है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। परमात्मा आकर हमें सत्य समझाते हैं कि बच्चे आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। ये शरीर आपने इस संसार में आकर लिया है, इस शरीर को यूज किया है, और फिर इस शरीर को छोड़कर जाना भी। आत्मा ने आकर शरीर लिया है और आत्मा ही इस शरीर को छोड़कर जाएगी। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा 84 जन्म शरीर के होते हैं, परंतु उन शरीरों को धारण करने वाली आत्मा है, शरीर आत्मा को धारण नहीं करता। इसलिए जितने ड्रेस वो आत्मा आकर इस संसार में धारण करती है उसके उतने जन्म समझे जाते हैं। अच्छा, ये शरीर अपने आप बन जाता है क्या? कोई बना के देता है? क्या होता है, शरीर कैसे बनता है, कौन बताएगा?
शरीर आत्मा बनाती है।
शरीर आत्मा बनाती है, शरीर की क्रिएटर भी आत्मा है। तो पालना कौन करता है?
आत्मा ही
करती है। आत्मा ही शरीर की पालना करती है। और मारता कौन है उसे?
आत्मा ही मारती है,
आत्मा ही मारती है, परमात्मा नहीं मारता। कोई धर्मराज, कोई यमदूत आपकी आत्मा को नहीं मारते।
नहीं, आत्मा अपने कार्य को बहुत बड़ा पूरा होता है, जो शरीर को छोड़ देती है।
आत्मा शरीर को धारण करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। जब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी इस देह की मृत्यु नहीं हो सकती। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की ताकत इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकती, मार नहीं सकती, नष्ट नहीं करना बोल सकता, मार नहीं सकती। यदि आत्मा का उसमें पार्ट है, आत्मा ने अभी शरीर से पार्ट बजाना है, तो वे किसी ना किसी तरीके से शरीर बच जाएगा, वे शरीर नष्ट नहीं हो सकता। कितना टाइम वो कोमा में पड़ा रहे, कितना टाइम वो किसी भी अवस्था में रहे, कितना भी कुछ भी हो, परंतु जब तक उसका समय इस शरीर से पार्ट बजाने का है, वो पार्ट बजाएगी और तब आत्मा शरीर को छोड़ेगी। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा ही शरीर को जन्म देने, आत्मा ही शरीर को मृत्यु देने के निमित्त पालना करना, तीनों काम आत्मा ही करती है। वो इस शरीर की क्रिएटर भी है, पालनकर्ता भी है और इसकी डिस्ट्रॉयर भी। परमात्मा किसी को नहीं मारता, कोई धर्मराज, कोई यमदूत नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिए। 84 जन्मों का राज और आत्मा का पहला पाठ के बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो। ठीक है ना, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये पहला पाठ है जो हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। इसको हम पहला पाठ भी कहते हैं तो इसको हम आखिरी पाठ भी कहते हैं। अगर ये किसी को पक्का हो गया तो फिर बाप की याद भी स्वाभाविक हो जाती है। तो फिर बाप की याद भी क्या हो जाती है? स्वाभाविक। स्वाभाविक याद को क्या कैसे समझाएगा? कोई मुझे समझाए कि स्वाभाविक याद क्या होती है, क्योंकि आपने सबको समझाना है। स्वाभाविक याद क्या होती है? जैसे आप अपने माता पिता के घर रहते थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल, जैसे ही शादी हुई, अब आपको ये नेचुरल याद रहता था कि मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं। ये याद करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले आप क्या अपने आप को पति या पत्नी के रूप में याद कर सकते थे? ऐसा क्या हो गया सात फेरे के बाद या शादी के किसी भी तरीके के बाद कि आपने अपने आप को पति या पत्नी स्वीकार कर लिया? क्या हो गया? कौन बताएगा? क्या हो गया था उन सात फेरों में, या क्या बोलते हैं, शादी का कोई भी तरीका अडॉप्ट करने के बाद, चाहे कोर्ट मैरिज करने के बाद, अब आपको याद रहता है कि मैं पति हूं, मैं पत्नी। उसके लिए तो रोजाना आपको सिर खाना पड़ता है बाबा को, जैसे सिर खा रहा है हमारा। किसी ने सिर खाया था आपका? पायल होते ही, असत करते ही, वरमाला डालते ही, जो भी विधि थी, समझ लिया गया कि मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, कोई कुछ और करने की जरूरत ही। और यहां देखो, बाबा ने आकर हम सबको समझा दिया, हमने समझ भी लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा द्वारा ज्ञान लेकर पुनः सतयुग का मालिक बनूंगा। मुझे ये समझ में भी आ गया, मैंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। कोई इसमें जिसको समझ में ना आया हो वो बताए जरा, कोई ऐसी आत्मा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा, उसने अभी भी अपने को शरीर समझ रखा। सबको समझ में आ गया है, परंतु बाबा कहते बच्चे तुम्हारी आदत बहुत समय से बिगड़ी हुई है, इसलिए तुम अपने को शरीर समझ, ये तुम्हारे संस्कार तुम्हें शरीर समझने के लिए मजबूर करते। तुम इतना अपने आप को भूल गए हो, 5000 साल से, सभी नहीं, कोई कम भी होगा, कोई लेट आया है, तो इतना कम टाइम से अपने आप को भूल गए। अब परमात्मा आकर हम सबको याद दिलाते, बच्चे तुमने स्वयं को भूल कर विश्व मूर्ति में आकर विकर्म भी शायद करने लग गए। और विकर्म जब हम अपने आप को स्वाभाविक रूप से ये स्वीकार कर लेंगे कि हम आत्मा हैं, और विकर्म भी सहज जलते जाएंगे, हमारे विकर्म ऑटोमेटिक खत्म होते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है कि ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। नंबर एक, आत्मा की पहचान, पहला पाठ, पहले बाबा ने आके हमें समझाया कि तुम आत्मा हो बच्चे, आत्म अभिमानी हो बैठे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता बाबा आके पढ़ाए और किसी ना किसी नए तरीके से ये हमें स्मृति जरूर दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्म अभिमानी होकर बैठो, मैं आत्माओं को पढ़ाने के लिए आया हूं। अगर आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, देह अभिमानी होंगे तो देह के संबंधी याद आएंगे। यदि मुझे देह के संबंधी याद आ रहे हैं तो मैं कौन हूं? मैं देह, मैंने अपने आप को अभी तक आत्मा नहीं समझा है, मैंने अपने आप को आत्मा नहीं समझा है। उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी जब क्लास में बैठता है तो वे पहले जानता है मैं विद्यार्थी हूं, जानता है क्या? लाइन समझ में आई है? जब कोई भी विद्यार्थी एडमिशन ले लिया है, क्लास में बैठता है, तो उसकी बुद्धि में ये आ जाता है कि मैं स्टूडेंट हूं, ये मेरा टीचर है, मैं पति हूं, ये मेरी पत्नी है, या मैं पत्नी हूं, ये मेरा पति, नेचुरल हो जाता है। तो ये पहले जानता है मैं विद्यार्थी हूं, तभी शिक्षक को वो ध्यान से सुनता है, तभी वो टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुन सकता है। यदि उसे ये ना याद आए, ये ना समझ में आए कि मैं किस लिए आया हूं, तो वो टीचर की बात तो सुनेगा ही नहीं। वैसे ही जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो बाप की याद सहज बनती, और हम ये भी जानते हैं कि बाप की याद माना बाप की श्री मत पर सहज चलने लगते, क्योंकि वो आया है हमें नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए। मूल बात आत्मा को पहचानो, आत्मा के बाप को याद करो। आत्मा को पहचानो और आत्मा के बाप को याद करो। और याद करो का मतलब भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि बाबा की श्री मत पर चलो। हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए, मृत्यु लोक के लिए नहीं। ये पढ़ाई किसके लिए है? अमर लोक के लिए, मृत्यु लोक के लिए नहीं। मृत्यु लोक के लिए नहीं। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? जो मनुष्यों के पास नहीं है। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर आत्माओं को सिखाते हैं, स्वयं आकर आत्माओं को सिखाते हैं, और कोई नहीं सिखाता। जो इस सृष्टि पर किसी को भी नहीं है, जो ज्ञान, जो नॉलेज इस संसार में किसी के पास भी नहीं है, संसार में किसी के पास भी नहीं है। मनुष्य इस बात से अनजान है कि ईश्वर अभी इस संगम युग पर आकर आत्माओं को स्वर्ग के देवता बनने की पढ़ाई दे रहे हैं। आत्माओं को स्वर्ग के देवता बनने की पढ़ाई दे रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान, ये पढ़ाई और इसकी खुशी, इसलिए ये ज्ञान, ये पढ़ाई और इसकी खुशी तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के पास क्या है? एक गुप्त खजाना है, एक गुप्त खजाना है। ठीक है, और किसी के पास है नहीं, और बाबा ने आपको दिया है, तो आपके पास ये क्या हो गया? गुप्त खजाना हो गया। मुख्य बिंदु, तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं, वे भविष्य अमर लोक के लिए, तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य अमर लोक के लिए है। उदाहरण, जैसे कोई आईएएस की आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी सामान्य पढ़ाई नहीं करता, उसका फोकस ऊंचे पद पर होता है, उसे एक एक बात दुनिया की जानने का प्रयास करना होता है, पता नहीं एग्जाम में कौन सी बात पूछी जाए, उसका कोई सिलेबस नहीं होता कि ये पूछा जाएगा, पूरा वर्ल्ड पढ़ा है वो कुछ भी पूछ सकते, जो आपने सोचा नहीं होगा कभी सपने में वो पूछा जाता, अजीब क्वेश्चन होते, उसे अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ना होता है, कोई भी चीज ये कहे कि ये तो सिलेबस में नहीं है, पूरा संसार सिलेबस है। वैसे ही हम आत्माएं स्वर्ग के देवता पद के लिए पढ़ रहे हैं ना कि इस दुनिया के लिए पढ़ रहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, स्वर्ग के श्रेष्ठ पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि इस दुनिया के लिए पढ़ रहे। नंबर 3, सवेरे उठकर पहला पाठ याद करो। ये बात समझ में आई है? अमृत वेले जैसे ही बाबा कहते आंख खुले, बस क्या याद आई? आंख खुलते ही क्या याद आए? कौन बताएगा? और और असली बात नहीं आई अभी, असली बात नहीं आई अभी।
मैं आत्मा हूँ, मैं बात बजाने के लिए आ रहा हूँ।
कहाँ से आ रहे हो आप?
परमधाम से।
आप तो परमधाम से आए हो, गलती हो नहीं सकती। उठते ही आपने उठना कहाँ है? परमधाम में उठना है, क्योंकि ये उठेगा वो परमधाम में जो रात को बाबा के साथ सोया हो। और जो बाबा के साथ रात को नहीं सोता तो वो कहाँ सोता है? कौन बताएगा? जो बाबा के साथ नहीं सोता तो रात को कहाँ सोता है?
रावण के साथ सोता है।
और अच्छी तरह बताओ। है? हाँ? गैरेज में सोता है, यानी गैरेज में सोता है। गैरेज क्या बुला होती है? गैरेज क्या होता है भाई? गाड़ी खड़ी कर, जा गाड़ी खड़ी की है तो गाड़ी में सोया पड़ा है ना।
गाड़ी में सोता है
तो गाड़ी में सोता है तो गैरेज में सोता है। बताओ, ये तो पता ही नहीं था, कैसे होगा? रात को हमने बाबा के साथ सोना है, फिर उठकर इस गाड़ी में आना है। उठना है बाबा के पास, फिर आकर इस गाड़ी को चलाना है। समझ में आई बात? मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूं। सवेरे सवेरे बाप कहते उठो, घूमो, फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना क्या हो जाएगा? तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। उदाहरण, जैसे योगी जन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं, वैसे ही हम ब्राह्मण आत्माओं को भी 4 बजे के आसपास उठकर बाप की याद में बैठना चाहिए। ये है सच्चा रूहानी अमृत वेले का तप। चार, देह अभिमानी बनाम आत्म अभिमानी। देह अभिमान बनाम आत्म अभिमान, और देह अभिमान और आत्म अभिमान में क्या अंतर है? मुख्य बिंदु, देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। सिखलाते हैं देह के बाप को याद करना, अपने आप ही माँ का कहना मानना, बाप का कहना मानना अपने आप सीख जाता। कहना पड़ता है कि ये माँ को बेटा माँ का कहना मान, उसका प्यार ही उसको समझा देता। मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं या मैं आके सिखलाता हूँ, फिर खाता हूँ, बिना बादाम खिलाए कितने समय से हमारा सिर खा रहे हैं और हमें समझा रहे समझाते रहते हैं, और हम हैं कि इसको मानने के लिए तैयार? बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, कहना पड़ता है बाबा को आकर। वो तो समझदार नहीं होते, अपने आप समझ जाते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा पापा है, इनके पास जाना है, बेशक वो बोल नहीं सकता, पर वो उनके पास जाएगा, कोई दूसरा लेने आएगा तो उनके पास नहीं जाएगा। उसने समझ लिया है कि ये मेरे संरक्षक है, मेरे को इनके पास मैं सुरक्षित हूं, नए व्यक्ति के पास सुरक्षित नहीं। धीरे धीरे उसे विश्वास होता है कि अच्छा ये भी मेरा भला करने वाले हैं, ये भी अपने हैं, अपनापन आता है, तब वो उनके पास भी जाने लगता है। उदाहरण, जैसे कोई अभिनेता अपने रोल में इतना खो जाए कि असली पहचान भूल जाए, वैसे ही आत्मा जब देह अभिमान में डूब जाती है तो बाप को भूल जाए। जिसके लिए एग्जांपल दिया था कि एक पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, वो पति किसी और का है, वो पत्नी किसी और की है, परंतु फिल्म में वो रोल पति पत्नी का कर रहे हैं और दुनिया वालों को लगता है कि वाक्य में ही ये पति पत्नी हैं, जबकि वो दोनों अपने आप में ये जानते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है, हम पति पत्नी नहीं है, हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं। और जिस दिन वो दोनों एक्टिंग करते करते इसको ही रियल कर दे, भूल जाए कि हम अलग अलग, हमारे कोई पति पत्नी अलग अलग हैं, और इस जीवन को बना दे, तो क्या होगा? इस एक्टिंग को रियल कर दे तो क्या होगा? कुछ होगा? दो घर बर्बाद हो जाएंगे, उसकी पत्नी गई और उसका पति गया, वो दो घर बर्बाद, एक घर बचा। समाधान, अब देह के संबंध तोड़ एक बाप से जोड़, अब ये देह के संबंध तोड़कर एक बाप से जोड़, अब ये देह के साथ कोई संबंध मत रखो, ये आपका कुछ है ही नहीं, ये तो मात्र एक साधन था जिसने आपको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनाया, अब मेरे पास आओ और तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। नंबर 5, बीज बाप और कल्प वृक्ष की स्मृति। बीज बाप और कल्प वृक्ष की स्मृति, मुख्य पॉइंट है हमारे पास, अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करो, बाप जो बीज है और उसके कैसे ये सारा संसार बना है वो बैठ कर याद करो, क्योंकि इससे ही सच्चाई समझ में आएगी और उस सत्य मार्ग पर चलने में मदद मिलेगी। अपने आप को समझाना है, सारी सृष्टि का बीज हम आत्माओं का बाप है, वो आकर हम आत्माओं को सारा सत्य ज्ञान देते हैं, उसी को सत्य कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और कोई दुनिया में देहधारी सत्य हो नहीं सकता। उदाहरण, हर किसान जब पेड़ देखता है तो जानता है कि बीज से वृक्ष बना, हर किसान को पता है कि मैंने ये बीज डाला था उससे ये पेड़ बना है। हम भी ये समझे, बीज शिव बाबा है, ये विश्व वृक्ष या कल्प वृक्ष ये झाड़ है, शाखाएं इसके अंदर धर्म है, ये ज्ञान केवल संगम युग पर ही मिलता है, सिवाय शिव बाबा के कोई दे नहीं सकता। छठा पॉइंट है, संगम युग आत्मा का पुरुषोत्तम समय, संगम युग आत्मा का पुरुषोत्तम समय, मुख्य बिंदु अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म भी, इसके लिए भविष्य में 21 जन्मों के लिए। उदाहरण, जैसे नई फसल का बीज बहुत मजबूत होता है, वैसे ही संगम युग पर आत्मा का सबसे सशक्त स्वरूप निकलता है, पुरुषोत्तम आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में आत्माओं में उत्तम आत्मा बनती है। यही वो समय है जब परमात्मा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं और हम बन सकते हैं। ज्ञान और भक्ति का भेद, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर ये ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, कोटों में कोई आकर ये ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं। उदाहरण, भक्ति में सिर्फ भावनाएं होती हैं, हे भगवान आओ, हे भगवान आओ, फिर ज्ञान सागर ज्ञान मार्ग में बाप खुद आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान मार्ग में बाप खुद आकर ज्ञान देते हैं। भगवानोवाच, ये कोई कल्पना नहीं, सब अब की वास्तविकता है। ज्ञान और भक्ति का भेद, ज्ञान और भक्ति का भेद। नंबर एक, भक्ति मार्ग में भावनाएं, भक्ति मार्ग में क्या होती हैं? भावनाएं। और ज्ञान मार्ग में बाप की पढ़ाई। भक्ति में पुकारते हैं, हे भगवान आओ, ज्ञान में भगवान खुद आकर पढ़ाते। भक्ति में पुकारते हैं, हे भगवान आओ, आकर हमें अक्कल दो, भगवान अक्कल बांटो, उसको भी तारा, उसको भी तारा, मुझको भी तारो, मेरे को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हैं और ज्ञान मार्ग में परमात्मा के पास बैठकर ज्ञान लेकर पावन बनते। भक्ति मार्ग आधार है भावना, भक्ति मार्ग का आधार क्या है? भावना। आत्मा अंधश्रद्धा पूजा पाठ और कथाओं में डूबी रहती है, भगवान को खोजती है लेकिन पहचानती नहीं। ज्ञान मार्ग आधार है सच्ची पहचान और समझ, आधार है सच्ची पहचान और समझ। परमात्मा शिव बाबा खुद आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं, परमात्मा शिव बाबा खुद आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा को उसकी अमरता स्वरूप अधिकार की याद दिलाते हैं, आत्मा को उसकी अमरता स्वरूप और अधिकार की याद दिलाते हैं। नंबर दो, भक्ति है राग, भक्ति है राग का मार्ग और ज्ञान है दिन की शुरुआत। मूली का बिंदु है, भक्ति मार्ग है अंधियारा और ज्ञान मार्ग है रोशनी का। ज्ञान मार्ग क्या है? रोशनी का। भक्ति मार्ग है अंधियारा ज्ञान मार्ग है रोशनी का। भक्ति में आत्मा खोई रहती है, बाबा को पहचान नहीं पाती, बाबा को पहचान नहीं पाती, बस पुकारती है हे प्रभु आओ उद्धार करो, हे प्रभु आओ उद्धार करो। ज्ञान में आत्मा जागती है, पहचानती है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा पिता है, अब मुझे पावन बनना है, अब मुझे क्या करना है, पावन बनना है। भक्ति में है द्वेष, ज्ञान में है अद्वेष, भक्ति में द्वेष और अज्ञान में अद्वेष। अब दुनिया वाले भक्ति में भी अद्वेष लेकर बैठे हैं, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। अब ये द्वेष और अद्वेष क्या होता है, भक्ति में आत्मा अलग है और भगवान अलग, इसलिए पुकार है। ज्ञान में आत्मा स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा से योग लगाकर पावन बनती है। अब यहां भी कह दिया है अद्वेत, परंतु प्रैक्टिकल में हम ध्यान देखें कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग, आत्मा अलग और परमात्मा अलग, आत्मा भी परमात्मा को से योग लगाकर पावन बनती है ना, जैसे हम द्वेत कहेंगे या अद्वैत कहेंगे। ये बात बहुत हांजी द्वेत ही हो गया सर। बात सारी क्या है कि बहुत बड़ा इस दुनिया के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है, जो भक्ति मार्ग के अंदर भ्रम फैला वो भ्रम यहाँ भी भ्रम फैलाने में सहयोगी बनता है। भक्ति मार्ग के अंदर मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आज तक तो नहीं होगा, फिर बनाना पड़ेगा, कि द्वेत अद्वेत शुद्धाद्वेत विशिष्टाद्वेत और फिर उसके बाद वैष्णव द्वेत अद्वेत, मतलब इस प्रकार से छह जो है ना का हिस्से, छह पंथ अलग अलग चले, और उसके बाद रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ और क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये भी इसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर करते करते उन्होंने अपने आप को अलग किया। बात सारी यही है द्वेत और अद्वेत पर अटके हुए, यानी आत्मा, देखिए प्रैक्टिकल सच्चाई ये है कि हर आत्मा यूनिक है, परमात्मा भी यूनिक है, हम सब आत्माएं अलग 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 हैं। परमात्मा एक है जो हमें क्या करता है, कर्तव्य के लाइट बनाता है, स्वर्ग के लाइट बनाता है, चढ़ की कला में ले जाता है, और बाकी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं वो हमें गिरती कला में ले जाते हैं, वो हमें कहां ले जाते हैं, गिरती कला में ले जाते हैं। भक्ति के अंत में ही भगवान आता है ज्ञान देने, जब भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। मुरली बिंदु है, कोटो में कोई मुझसे ज्ञान लेते हैं, बाकी सब भक्ति में लगे, बाकी सब कहां लगे हैं, भक्ति में लगे हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य सोचता है ईश्वर कल्पनाओं में, भक्ति मार्ग में मनुष्य सोचता है ईश्वर कल्पनाओं में है, वो कल्पना करता रहता है ये होगा ऐसा होगा। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूं, अब तुम्हारा उद्धार करता हूँ। निष्कर्ष, भक्ति में आत्मा पुकारती है, ज्ञान में आत्मा परमात्मा से संवाद और योग में रहती। परमात्मा से संवाद करना, परमात्मा से बात करना। हम आत्माएं, परमात्मा हमें पढ़ाता है तो हम परमात्मा से बात करते हैं। हमारे में से कोई परमात्मा से बात कर सकता है? किसी ने परमात्मा से बात की है? क्या परमात्मा ने उसको जवाब दिया है? अपने से बात करना परमात्मा से बात करना होता है। परमात्मा है परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा की मुरली, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हम अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें समझाया हुआ है, परमात्मा की समझ द्वारा हम अपने को उत्तर देते हैं, तो हमें परमात्मा से बात किया। और यदि हमने समस्या लेकर बैठे बाबा के कमरे में और समाधान किया दुनिया वाले वकील, डॉक्टर या सियानों के हिसाब से, तो क्या बाबा से बात हुई या उनसे बात हुई? बाबा से तो बात नहीं हुई ना। बाबा से बात तब है जो बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है, रामार्ग दर्शन किया हुआ है, हम उनके हिसाब से चले, तो हमने बाबा से बात की। और यदि हम किसी और का कहना मान रहे हैं तो हमने उससे बात की, बाबा से अच्छी बात तो उसने बताई, बाबा जो बता रहा था उसे तो घाटा हो सकता था, परंतु जो बाबा का तो वंडरफुल है। जब ये समझ में आ जाए कि इसमें ही फायदा है, तब उसका कहना मानेंगे, तब बात कर सकते हैं। भक्ति से थक कर ही आत्मा ज्ञान मार्ग में प्रवेश करती है। जब भक्ति से थक जाती है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तब वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश करती है। ज्ञान ही आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। ज्ञान ही आत्मा को क्या करता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। शिव बाबा ही पतित पावन अमरनाथ, शिव बाबा ही क्या है? पतित पावन अमरनाथ, मुरली बिंदु, शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते, वो भक्ति है, वो है भक्ति, और वो सो जाती है। स्पष्टीकरण, अमर कथा का सच्चा रहस्य ये है कि शिव बाबा हमें आत्मा को अमरता का ज्ञान सुना रहे, हमें सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम अमर आत्मा हो। ये कथा कोई पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा की अमर कहानी का बोध है, आत्मा की अमर कहानी का बोध है, समझ है। बोध माना समझ, अमर पहचान का बोध समझ है। नौवां, पहला पाठ, क्योंकि बाबा का पहला पाठ ही आज का सबसे बड़ा है, अलग को याद करो। अलग कौन होता है? अलग कौन होता है भाई?
अलग
तो अभी तक तो पहला पाठ आत्मा हो रहा था, अब ये बदल जाता है, पहला पाठ वो भी है, वो भी है, ये दोनों पाठ ही पहले हैं। आत्मा के बिना परमात्मा को नहीं समझ सकते, परमात्मा के बिना आत्मा को नहीं समझ सकते। परमात्मा और आत्मा इन दोनों की समझ ही एक दूसरे को समझाती है, क्योंकि दोनों एक जैसे। परमात्मा भी एक आत्मा, जब वो आत्मा का परिचय देते हैं तो बताते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। जो घर में तुम्हारा बाप है वो तुम्हारे शरीर का बाप है, तुम्हारे शरीर का बाप है। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलग की बात याद करो, अलग माना आत्मा, अलग माना अल्लाह। अलग का अर्थ एक और आत्मा और एक और अल्लाह शिव बाबा, ये दोनों के लिए आता है, आत्मा के लिए भी आता है और अल्लाह के लिए भी आता है। ये दोनों पाठ एक ही साथ पूरे होते हैं, एक के बिना दूसरा पाठ पूरा नहीं हो सकता, दूसरी बात समझ में नहीं आ सकती। जब तक अल्लाह याद है तब तक बेटे, बेटे समझते हैं, जैसे ए के बाद बी होता है फिर सी होता है, ऐसे उर्दू में पहला अक्षर अल्लाह है, दूसरा अक्षर बे है और तीसरा अक्षर ते। तब तक बेटे और मुल्क, मतलब बच्चे और राज्य, बच्चे और राज्य के अधिकारी बनते। जब तक वो पहला पाठ नहीं पढ़ेंगे, अलफ नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनको बे से बच्चे और ते से मतलब संसार तक या राज्य है नहीं, वो उनको समझ में नहीं आएगा। मतलब ए समझ में नहीं आया तो बी सी डी समझ में नहीं आएगी। अंग्रेजी में ए बी सी डी का मतलब क्या होता है किसी को पता है? और डी फोर क्या? हमारे बच्चे सारे समझदार हैं बाबा से भी, अपने ये भी तुक्के लगा लेते हैं ना, बना दिया ए बी सी डी भी। दस निष्कर्ष, पहला पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही मेहनत है, प्रेरणादायक वाक्य है, हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा बाप है, मैं अब पावन बनने की यात्रा पर हूं। मीठे बच्चों पहला पाठ बोलना नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, यही आत्मिक स्थिति बाप की याद को सहज बना देती है। आत्मा की स्मृति में रहो तो बाप खुद तुम्हें अमर लोक का मालिक बना देंगे, आप खुद तुम्हें अमर लोक का मालिक बना देंगे। अच्छा, शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करे 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करे, फोन नहीं। ओके।